आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी इमारतों, स्टेडियमों, रेलवे लाइनों, कृषि परियोजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं के निर्माण के लिए हमें भूमि कहाँ से मिलती है? जिस भूमि पर हम अभी रह रहे हैं वो हमें कहाँ से मिली? क्या तुम्हें कभी यह विचार आया कि इस बड़ी इमारत से पहले या इस बड़े खेत से पहले इस भूमि पर क्या था? सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, आए हम अपने आसपास आज जो भी विकास देख रहे हैं वो सभी उस भूमि पर है जहां पहले वन हुआ करते थे। बढ़ती मानव जनसंख्या और उसकी बढ़ती आवश्यकताओं के साथ हमने वनों को काटना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा अनुसार वहां चीजें बनाई। इस प्रक्रिया को वनों की कटाई या वनोन्मूलन कहा जाता है। आइए वनोन्मूलन पर विस्तार से चर्चा करें। परिभाषा: वनों की कटाई वैश्विक भूमि उपयोग में सबसे बड़े मुद्दों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। वनोन्मूलन को मानवीय गतिविधियों की सुविधा के लिए जंगल या अन्य भूमि से बड़े पैमाने पर पेड़ों को स्थायी रूप से हटाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग पलायन करते हैं और वहां बसते हैं। वनोन्मूलन या वनों की कटाई तब होती है जब मनुष्य लकड़ी के लिए जंगलों को हटा देते हैं या उनकी भूमि को छोटा कर देते हैं या उस भूमि का उपयोग फसलों, चराई, निष्कर्षण, खनन, तेल या गैस या विकास के लिए करते हैं। आए यह एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक आवासों की हानि, जल चक्र में गड़बड़ी और मिट्टी का क्षरण होता है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में भी वनोन्मूलन का योगदान है। आइए देखें कि किस प्रकार वनोन्मूलन इन सभी का कारण बना आए। वनों का महत्व, वन महत्वपूर्ण क्यों है? वन ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और कार्बन भंडारगृह के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन से हमें बचाते हैं। वन ऑक्सीजन, भोजन, स्वच्छ जल, औषधि और दवाइयों का स्रोत है। वन जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में जल बनाए रखने का काम करते हैं। वन बाढ़ जल संचयन के रूप में कार्य करके बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए वनों की कटाई से कुछ प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भूभाग की संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। वन क्षेत्रों में पेड़ों का विशाल समूह मिट्टी को यांत्रिक सहायता प्रदान करके मिट्टी के कटाव को बचाता है। ग्रह पर सभी ज्ञात प्रजातियों में से 50% से अधिक का घर वन है। वे भूमि आधारित जैव विविधता का 80% से अधिक हिस्सा है। विश्व स्तर पर वन लगभग 30 करोड़ मनुष्यों का घर है। वन कागज, लकड़ी और कपड़े जैसे कई व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। कारण: मानवीय गतिविधि के कारण वनोन्मूलन। कृषि: भोजन की लगातार बढ़ती मांग जो बदले में अधिक जनसंख्या से जुड़ी है को पूरा करने के लिए वन भूमि को बार बार साफ किया जाता है और कृषि भूमि में बदल दिया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार चार वस्तुओं में ताड़ का तेल, लकड़ी, सोए और गोमांस सम्मिलित हैं। अनेक मानवीय गतिविधियां इसमें योगदान देती है। इसका एक प्रमुख कारण वनों का कृषि भूमि में रूपांतरण है ताकि बढ़ती मानव आबादी को भोजन मिल सके। झूम खेती ने भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वनों की कटाई में योगदान दिया है। झूम कृषि में किसान जंगल के पेड़ों को काट देते हैं और पौधे के अवशेष को जला दें, फिर राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और भूमि का उपयोग खेती या मवेशी चराने के लिए किया जाता है। खेती के बाद क्षेत्र को कई वर्षों तक छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी पुनर्प्राप्ति संभव हो सके। इसके बाद किसान आगे बढ़ते हैं और अन्य क्षेत्र में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। खनन: तेल और कोयले के खनन के लिए बड़ी मात्रा में वन भूमि की आवश्यकता होती है। सड़कों के निर्माण से वनों की कटाई होती है क्योंकि वे दूरस्थ भूमि तक रास्ता प्रदान करती हैं। खनन से निकलने वाला कचरा पर्यावरण को प्रदूषित करता है और आसपास की प्रजातियों को प्रभावित करता है। आय शहरी विस्तार: जैसे जैसे अधिक लोग शहर की ओर जाते हैं, जहां सामान्यतः आय और उपभोग की दर अधिक होने के कारण जंगलों पर अधिक दबाव डाला जाता है ताकि रहने के लिए अधिक स्थान मिल सके और अधिक पशु और खाद्य उत्पाद पैदा कर सके, जिसके लिए जंगलों की अधिक सफाई की आवश्यकता होती है। मवेशी चरागाह: वन भूमि को चारागाह में बदलने से बड़े पैमाने पर वन भूमि की हानि होती है। मवेशियों द्वारा अत्यधिक चरने से पौधों की हानि होती है और इस प्रकार ऊपरी मिट्टी की हानि होती है। अंततः यह वनोन्मूलन की ओर ले जाता है। प्राकृतिक कारणों से वनोन्मूलन: जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, उष्णकटिबंधीय तूफान, लू आग में आवृत्ति बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप वन हानि में वृद्धि हो रही है, जिससे वायुमंडल में अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं: प्राकृतिक आपदा के कुछ प्रभाव जैसे अधिक जंगल की आग, कीड़ों का प्रकोप, आक्रामक प्रजातियां का प्रकोप, बाढ़ और तूफान ऐसे कारक हैं जो वनोन्मूलन को बढ़ाते हैं। आए प्रभाव वनोन्मूलन हमारे पर्यावरण में हो रही एक नकारात्मक प्रक्रिया है, इसलिए इसके प्रभाव भी नकारात्मक है। इसके प्रभाव बहुत व्यापक है, आइए उन्हें देखें। स्वास्थ्य पर प्रभाव, वनों की कटाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए एक पथ प्रदान कर सकती है। वनों की कटाई के साथ साथ प्रायः पौधों की देशी प्रजातियों की हानि होती है, जिसके स्थान पर नई पौधों की प्रजातियां बढ़ने लग जाती हैं। इसलिए वनों की कटाई वाली भूमि पर नई प्रजातियों का पनपना असामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए मलेशिया में फल खाने वाले चमगादड़ों की आबादी में भौगोलिक बदलाव, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप ने निपाह वायरस के संचरण को सुविधाजनक बनाया। निपाह वायरस इन विशेष प्रजाति के चमगादड़ों में पाया जाता है। आए फल खाने वाले चमगादड़ ने, जिन्हें बीमारी के वाहक के रूप में जाना जाता है, वनों की कटाई के कारण अपना प्राकृतिक आवास खो दिया और निवास क्षेत्रों के आसपास के बगीचों में खाना शुरू कर दिया। निकटता के कारण निपाह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ों से सूअरों और फिर मनुष्यों में फैल गया। मृदा अपरदन में वृद्धि, वनों की कटाई के कारण के परिणाम स्वरूप स्थिर जल के तालाब बन सकते हैं। ये तालाब मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करते हैं, जो मलेरिया और पीले बुखार जैसी कई घातक बीमारियों के वाहक हैं। इस प्रकार इन बीमारियों का भी संचारण हो जाता है। आय आर्थिक प्रभाव, वनों की कटाई से उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए कच्चे माल के उत्पादन में सुविधा होती है। उदाहरणों में कृषि उद्योग, लकड़ी उद्योग और निर्माण उद्योग सम्मिलित हैं। हालांकि लकड़ी और लकड़ी के अत्यधिक दोहन से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए किसी वन क्षेत्र से अत्यधिक लकड़ी की कटाई से अस्थायी रूप से कुल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन घटते वन क्षेत्र के कारण अंततः फसल में गिरावट आती है। ऐसी प्रथाओं से कुल वन उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसलिए वन संसाधनों के उपयोग के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण ही अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श है। आय पर्यावरण पर प्रभाव, वायुमंडलीय प्रभाव, ग्रीनहाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि के कारण होता है। आय प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस है। वनों की कटाई ग्रीनहाउस प्रभाव और परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग में प्रत्यक्ष योगदान करती है। जलमंडलीय प्रभाव, पेड़ जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वनों की कटाई इसमें बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में नमी की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वे अपनी जड़ों के माध्यम से भूजल को अवशोषित करते हैं और इसे अपनी पत्तियों और फूलों से वातावरण में छोड़ते हैं। साथ ही उनकी जड़ें मिट्टी में दब जाती हैं और उसमें मैक्रोपोर्स बनाती हैं। ये मैक्रोपोर जल को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति देते हैं, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण वनों की कटाई के साथ साथ नमी भी कम हो गई है। साफ की गई भूमि में मिट्टी में जल की मात्रा और भूजल स्तर में भी गिरावट आती है। वनों की कटाई वाली भूमि पर अत्यधिक शुष्क जलवायु का अनुभव होना कोई असामान्य बात नहीं है। वास्तव में वनों की कटाई को मरुस्थलीकरण और सूखे से जोड़ा गया है। मृदा पर प्रभाव, पेड़ अपनी जड़ें मिट्टी से बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी पर पकड़ बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पेड़ों से उत्पन्न मृत भाग मिट्टी की सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ों की अनुपस्थिति में वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप मिट्टी कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूक्षरण कहा जाता है। आय ढलान वाली भूमि पर वनों की कटाई प्रायः भूस्खलन के साथ होती है, जिसे पेड़ों की अनुपस्थिति के कारण मिट्टी के आसंजन के नुकसान से समझाया जा सकता है। बाढ़ जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाओं से कटाव की सीमा बढ़ जाती है। जैव विविधता पर प्रभाव, वन वन्य जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला को पोषित करते हैं। वनों की कटाई इस जैव विविधता के लिए गंभीर संकट है। स्थानीय स्तर पर वन भूमि की सफाई से कुछ प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ सकती है। हालांकि वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप कई वांछनीय प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप पौधों, जानवरों और कीड़ों की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। रोकथाम, पुनर्वनरोपण, पुनर्वनरोपण उस जंगल को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया है जो कभी अस्तित्व में था लेकिन पिछले दिनों किसी समय हटा दिया गया था। पुनर्वनरोपण वनों की कटाई वाले क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से होता है। परंतु हम इसकी गति बढ़ा सकते हैं उस क्षेत्र में पहले से उपस्थित जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगा सकते हैं। आई व्यक्ति की भूमिका। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य अपने संसाधनों, अन्य मनुष्यों, अन्य प्रजातियों और भावी पीढ़ियों के लिए के संरक्षण का उत्तरदायित्व साझा करता है। एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में 3R रिड्यूस कम करें, रीयूज पुनः उपयोग और रिसाइकल पुनर्चक्रण सिद्धांत को लागू करके वनों की कटाई की रोकथाम में योगदान दे सकता है। उत्पादों का कम उपयोग, जहां भी संभव हो विकल्पों का उपयोग करके कागज की खपत को कम करें। उत्पादों का पुनः उपयोग, उत्पादों की बर्बादी को रोकने के लिए उत्पादों को इस्तेमाल करके फेंक देने से बचें। उदाहरण के लिए प्लांटर के रूप में प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग। रसोई में मसाले रखने के लिए कांच की बोतल का उपयोग करें। स्टेशनरी आदि के भंडारण के लिए टिन के डिब्बों का उपयोग करें। उत्पादों का पुनर्चक्रण, सभी उपयोग किए गए लकड़ी और कागज के उत्पादों का परिश्रम पूर्वक पुनर्चक्रण करें। पुनर्चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्रियों और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति वनोन्मूलन के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता फैला सकता है। अन्य व्यक्तियों को वनों की कटाई और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना। वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर भी वनोन्मूलन कम कर सकते हैं। कागज रहित कार्य करना और जहां भी संभव हो डिजिटल मीडिया का उपयोग करना, डिजिटल रसीदों का उपयोग करना, पत्रों के बजाय ईमेल के उपयोग को प्राथमिकता देना। सरकार की भूमिका। वनों की कटाई से निपटने के लिए सरकारें निम्नलिखित रणनीतियां लागू कर सकती हैं। वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों और कठोर कानूनों का कार्यान्वयन। सरकारी संरक्षण में वनों की संख्या और सीमा बढ़ाकर वन क्षेत्र की क्षति को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे, सड़कें, बांध आदि के निर्माण की सावधानीपूर्वक योजना बनाकर। कृषि उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों जैसे पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों, चक्रीय कृषि को करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आर्थिक रूप से सहायता करना। अकुशल कृषि पद्धतियों जैसे स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि या स्लैश और वन कृषि पर प्रतिबंध लगाकर वनों के प्रबंधन को अनुकूलित करना। लकड़ी की मांग को कम करने के लिए लकड़ी के विकल्पों के उत्पादन और उपयोग को सुविधाजनक बनाकर। वनों की कटाई से क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने के लिए नए वनीकरण अभियान शुरू करना। वन वृक्षारोपण में निवेश करना।